और आगे देखिए आयत 61 से 64 में क्या थीम है कि अगर अल्लाह की रहमत ना होती तो हम तबाह हो जाते, यानी अगर आज आप और मैं इस दुनिया में जी रहे हैं ना तो ये अल्लाह की रहमत की वजह से जी रहे हैं। वलौ युआख़िज़ुल्लाहुन्नास बिज़ुल्मिहिम, अगर अल्लाह लोगों के जुल्म पे उनको पकड़ ले, मा तरक अलैहा मिन दाबा, कोई एक क्रिएचर, कोई एक दाबा, कोई एक हल्की सी चाल वाला भी ना बचता, लेकिन वो मोहलत देता उनको एक ख़ास वक्त तक। हाँ, जब वो मोहलत आ जाएगी तो ना कमी किए जाएंगे ना आगे होंगे। क्या पता चला कि इस दुनिया में तुम्हारा एक सेट टाइम है, गुनाह कर लो या नेकियां कर लो, अल्लाह ने तुम्हें इसमें रखना ही है और ये उसकी रहमत है। फिर आगे आप देखिए कि सूरत नहल जो है ना, ये नेमतों वाली सूरत है, इसका एक नाम सूरत नेम भी है, नेम भी कहते हैं, नोम भी कहते हैं। तो आयत 65 से 69 में हमें कुछ नेमतों की पहचान करवाई जा रही है और साथ ही उसकी शुक्रगुजारी का मशवरा दिया जा रहा है। वल्लाहु अनज़ला मिनस समा, अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा, फिर उसके ज़रिए मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा किया, और इसमें अलबत्ता निशानी है उस कौम के लिए जो सुनती है। क्या पता चला कि बारिश हो। फिर आगे इसी में आयत 66 में वलकुम फिल अनामिला इबरा की बात है, नुस्की को मिम्मा फ़ी बतूनी मिम बैनी फरसम व दमिन लबनन खालिसन। शुरू में मैंने आपको तذکرہ किया ना कि सूरत नाहल में टीम वर्क है। अब यहाँ आपको हमें कुछ उस्तादों से मिलाया जा रहा है जो टीम के साथ मिलकर आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें आप देखिए कि बारिश, बारिश कैसा टीम वर्क है, समंदरों से बखारात उठते हैं, हवाएं लेके बादलों को उड़ाती हैं और उसके बाद वो पानी बरसता है ना, एक पूरा सेट। फिर दूध, आज सुबह दूध पिया था, कभी देखा है दूध, कितनी चीज़ें आपके घर में दूध की। आज अपनी लिए एक्टिविटी लिखें कि जो भी चीज़ दूध से बनी हुई आप इस्तेमाल करेंगे इस बात को सोचिएगा। अल्लाह कहते हैं कौन काली भैंस के पेट में से सफ़ेद दूध, जिस पेट में खून की भी नाली है, पेशाब की भी नाली है, लेकिन आज तक कभी तुम्हें उस दूध में से पेशाब की बू नहीं आई होगी कि पाइप लीक कर गया और उसमें खून का रंग नहीं मिला होगा कि खून की नालियाँ चली गई। तो जो रब तुम्हें काली भैंस में से एक सफ़ेद दूध पिला रहा है, तुम बताओ कि तुम उस दूध को पीकर क्या करते हो, उसकी नाशुक्री, या उसी दूध को किसी ख़ास तारीख पे किसी बुज़ुर्ग के नाम पर पेश करके तुम उल्टी सीधी बातें करते हो। आयत 67 सूरत नाहल पहली आयत है जिसमें इशारा दे दिया गया था कि शराब हराम हो जाएगी। वमिन समरात नखील वाला नाप, यानी शराब बनाते थे अरब, पहले उसका तस्करा करके वरिस्कन हसना लिखना चाहें तो लिख लें, यानी माइंड सेटिंग की गई। अब वो आयत जिसकी वजह से सूरत नहल है वो देख लीजिए, वाउ हरब कैलन नहल, और आपके रब ने शहद की मक्खी की तरफ वही की। यहाँ वही से मुराद क्या है, दिल में ख्याल डालना। शहद जैसे बनता है ना, इसमें और मोमिन की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी मुमासलत है। आप देखिए कि मोमिन की मिसाल शहद की मक्खी की तरह होती है, जिससे फ़ायदा उठाए तो उसको नुकसान नहीं देती। शहद की मक्खी को मारने की ममानियत है, और आखरत में शहद की मक्खी की कदरदानी कैसे होगी। हदीस सुन लीजिए, मुस्नद अहमद की रिवायत है 1334, मोमिन की मिसाल शहद की मक्खी की सी है जो पाकीज़ा चीज़ खाती है और पाकीज़ा चीज़ निकालती है। वो जहाँ भी बैठती है ना तो किसी चीज़ को तोड़ती है और ना उसे ख़राब करती है, यानी अपने काम में लगी रहती है। आप इस एक आयत की सिर्फ तफसीर सुन लीजिए, आपको 20-25 नुक्ते मिलेंगे कि मोमिन कैसे बामकसद होता है और टीम वर्क है शहद में। आप देखिए, एक मलका मक्खी है जो आपकी लीडर है और बाकी वर्कर्स हैं जो आपके साथ काम करती हैं, आपकी टीम वाली हैं। कोई 50,000 उड़ाने एक शहद की मक्खी अपनी ज़िंदगी में फूलों का रस लेने के लिए लगाती है, जैसे फूल वैसा टेस्ट है। कोई मक्खी जो है वो उसको पेट में रख के उसके अंदर से अपने पेट से लुआब की सूरत में निकालती है, कोई वो छज्जा बनाती है हेक्सागोनल, फिर कोई इसमें कतरे डालती हैं, कोई उसके ऊपर मोम लगा के, कोई उसके पंखों से, परों से पंखे की तरह झलके उस शहद को ठंडा करती हैं। बिल्कुल जैसे शहद इंसानियत के लिए शिफा है ना, कुरान भी शिफा है। तो इसमें हम सब के लिए इशारे हैं कि अगर आप भी लोगों को नफ़ा देना चाहते हैं तो आपको शहद की मक्खी से सीखना है कि भाई हम भी दीन का काम वैसे ही करेंगे जैसे करना है। जिसको जो काम ज़्यादा अच्छा आता है वो काम कर ले, जो काम दूसरे कर सकते हैं उनको करने दीजिए, और जो काम आप के सिवा कोई नहीं कर सकता, आप उससे कभी पीछे ना हो। कोई बंदा आपसे ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है वही वाला, तो उसको वो काम देकर आप वो काम कर लीजिए जो है। इससे आप देखिए कि इंसानियत को इंशाल्लाह कुरान की बहारें मिलेंगी। आगे ज़िंदगी के बदलते रूप हैं, जिंदगी एक ढलता साया, तो सूरत यूनुस में पढ़ी आए थे। यहाँ आयत 70 में क्या है, वल्लाहु खलककुम, वो ज़ात जिसने तुमको पैदा किया, फिर तुमको फौत करता है, फिर तुम में से कोई अर्जल उम्र की तरफ लौटा दिया जाता है ताकि जानने के बाद फिर ना कुछ जाने, बेशक अल्लाह खूब इल्म वाला कदर वाला है। यानी बचपन, जवानी, बुढ़ापा और फिर बचपन। कभी आपने बूढ़ों को खिलौनों से खेलते देखा, उसको सोच लें। आगे शिर्क की नफ़ी की मिसालें हैं आयत 71 से 78 में, क्योंकि ये वो माहौल था जिसमें बिल्कुल शिर्क फैला हुआ था। अल्लाह ताला ने वल्लाहु फद्दला बादकुम अला बाद से लेके वानतुम तालमून में जो पैगाम आपको मुझे दिया वो क्या दिया है, कि जो रब देता है ना रिस्क, उसी का रिस्क खाकर उसकी बातों को भी मानो, किसी दूसरे के साथ ना ताल्लुक रखो। और इधर आप एक लफ्ज़ नोट कीजिए, आयत 72 में आपको दिख रहा है बनीना व हफदा। हफदा कहते पोते को, ग्रैंडसन, बेटी का बच्चा भी और बेटे का बच्चा भी। यानी नेमतों में से अल्लाह ने एक नेमत औलाद की सूरत में उनके बच्चों के बच्चे भी बता दिए। और हकीकत है कि इंसान अपने बच्चों को शायद इतना इंजॉय करे ना करे जितना उनके बच्चों को इंजॉय करता है। और इस सारी नेमतों को पाकर क्या तुम अल्लाह की मर्ज़ी को छोड़कर दूसरों की मर्ज़ी करोगे? आगे 75-78 में भी यही टॉपिक चल रहा है कि इतनी नेमतें पाने के बाद क्या दुनिया में शिर्क की कोई हल्की सी भी गुंजाइश हो सकती है? हरगिज़ नहीं। तो सूरत नाहल आपको मुझे नेमतों की तस्कीर करती है, और नेमतों में दो बड़ी नेमतें, घर और सुकून, इनका तस्करा आगे आ रहा है आयत 79 से 83 में। और वो क्या है कि घर सुकून वाली जगह होनी चाहिए। जिस घर में सुकून नहीं वहाँ कहाँ जाएंगे आप? देखिए बात है, ये भी तो बैतन कहते हैं वो जहाँ जहाँ रात गुजारी जाए। और मस्कन, सुकून, सकूनत अख्तियार करना, घरों में पुरसकून होना चाहिए। इस आयत में पूरे मुख्तलिफ तरह के घर हैं, झोंपड़ियाँ और खेमे, कच्ची बस्तियाँ और हमारे आपके पक्के घर। क्या आज हमारे बड़े घरों में सुकून है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह कि हम वो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर छोड़ चुके हैं। ये लिख के रख लीजिए कि जिस घर में दीन का काम हो रहा होगा वहाँ अल्लाह की रहमत से घर वालों के बीच में एक बॉन्ड भी होगा। आज आपके शौहर को बात नहीं समझ आ रही, कुछ अरसे में आ जाएगी। आपके बच्चों में खुद ब खुद अल्लाह ताला एक सब्र और एक ठहराव लाएगा। तो घर और सुकून जो दो नेमतें हैं, इनको लेने के लिए अल्लाह के इस कलाम के साथ जुड़ना लाजमी है। और उसके बाद आयत 84 से 88, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। क़यामत के दिन वो लोग जिनकी उम्मीद पे लोग गुनाह करते थे वहाँ बिल्कुल जान छुड़ा देंगे। आप जाकर सिर्फ तर्जमा पढ़ लीजिए इन आयात का, पहचानेंगे नहीं। हमने कब कहा था कि हमारी कब्रों पे आओ? हमने कब कहा था हमारे तुम मेले ठेले लगाओ और हमारे ये वाले काम करो? पता क्या चला कि दुनिया में सिर्फ अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को सीधा कर लीजिए, बाकी मामले खुद बखुद सीधे होंगे। फिर उसके बाद आयत 89, नबी सल्लम की उम्मत के ख़िलाफ़ गवाही। आप देखिए कि मुसलमान क़यामत के दिन उम्मीदवार होंगे कि अल्लाह के नबी उनकी सिफारिश करें। सिफारिश हक़ में नहीं, खिलाफ पड़ रही है इस आयत में, और बाकी आगे सूरह फुरकान में हम देखेंगे। क्या व यौम नबअसु फ़ी कुल्ली उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम, हम हर उम्मत के खिलाफ उसके नबी को लेके आएंगे। यानी मीन शहीद से मुराजा उस वक्त का रसूल है जो वहाँ उनके खिलाफ गवाही देगा, और हम आपको भी गवाह बना कर लाएंगे। अल्लाह के नबी इस गवाही के साथ से रोया करते थे, लेकिन असल बात है कि हमने कुरान पढ़ा ही नहीं है। हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि ये कितना प्यारा ताल्लुक़ है जो उम्मतियों के साथ नबी का है। इस पे हमारे दो लेक्चर हैं, एक उम्मती उम्मती और एक नफसी नफसी, ये पीके ट्रिप 22-23 में आपको मिलेंगे। ख़ास तौर पे जो नबी सल्लम को अपनी उम्मत से मोहब्बत थी उसको आप उम्मती उम्मती लेक्चर में सुन सकते हैं, और महसूस कीजिए कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। फिर उसके बाद आयत नंबर 90 सूरत नाहल की बड़ी अहम आयत है, बल्कि अक्सर मस्जिदों में जुमे के खुतबे में पढ़ी जाती है। और उस्मान बिन मज़ून इसी आयत को सुनकर मुसलमान हुए थे, और इसी तरह उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने इस आयत को खुतबा जुमा का हिस्सा बना दिया था। इसकी खूबी की वजह से तीन बातों के करने का हुक्म है। क्या? इन अल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसानी व इताइज़िल क़ुरबा। अदल करो, एहसान करो और रिश्तेदारों के साथ अच्छा मामला करो। फिर तीन चीज़ों से रोका गया, वयनहा अनिल फख्शा फुहश मुनकर यानी खिलाफे तबा चीज़ें, और बगी सरकशी या इज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अब यहाँ एक जुमला बोलने दीजिए, अगर ये आयत हर जुम्मे को मस्जिद के मर्द जो जुमा पढ़ने गए वो सुनते हैं, अगर इसको समझते भी हों, तो क्या आज हमारे मुल्क का ये हाल हो, आज उम्मत का ये हाल हो? कितनी ज़रूरत है कि हम अपने कुरान को समझें। छह चीज़ें वो किसी भी सोसाइटी के अंदर पीसफुल माहौल बनाने के लिए जो लाजमी थी उसका तस्करा है। फिर आयत 91 से 96 में मुआहदात की पासदारी का हुक्म है, वउफ बिअहदिल्लाह इज़ा आहदतुम, और आज हम उतने ही वादों के ख़िलाफ़ हैं। कार्ड पे शादी का टाइम लिखते हैं 8 बजे और 9 बजे तक घर वाले भी नहीं आए होते इल्ला माशाल्लाह। तो मुसलमान की ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी होती है। फिर इसमें आयत 92 में एक मिसाल है, कहते हैं कि अरब में एक औरत थी कि सारा दिन चरखा से सूत काटती और शाम को उसको फिर काट छोड़ती, धागे बना बना के तोड़ती। तो असल में ये एक एनालॉजी भी दी गई है कि अपने माहदे ना तोड़ो, कमिटमेंट्स ना तोड़ो। जब तुमने किसी को एक उम्मीद दिला दी, अब तुमने उसके साथ साइन अप कर लिया है, तो फिर अब तुम पीछे ना हो जाओ। यानी मुसलमान बहुत प्रिडिक्टेबल होता है, अचानक एकदम उसका मिजाज बदल जाए और वो कि मैं ये कुछ नहीं कर रहा, आप छोड़ दीजिए सब, ऐसा नहीं हो सकता। और बड़ी खूबसूरत आयत है पारे का, बिल्कुल हम एंड की तरफ जा रहे हैं, मन अमीला सालेहन मिन ज़कर नौनसा, जो कोई भी अमल साले करेगा चाहे वो मर्द हो या औरत हो, शर्त देके वहुवा मोमिन, ईमान वाला हो और ईमान वाली हो, फला नुखियन नहु हयातन तैयबा, हम उनको पाकीज़ा ज़िंदगी देंगे। इसकी इस वक्त आपके इस मुल्क में और पूरी इंसानियत में या पूरी उम्मत मुस्लिमा को ज़रूरत है। आज हमारी ज़िंदगी हयातन तैयबा नहीं रही, इस पे बहुत से लेक्चर्स भी हैं, पाकीज़ा ज़िंदगी हयात तैयब। आप देखिए लग्जरीज हैं आज लेकिन सुकून नहीं है। आज आप कहेंगे पीस तो है प्रॉस्पेरिटी नहीं है। बाहर की दुनिया जो बिल्कुल खूबसूरत म्यारे ज़िंदगी में है लेकिन उनके दिलों में सुकून नहीं है। तो पाकीज़ा ज़िंदगी, आँख पाक, दिल पाक, नज़र पाक, उसका खुलासा अच्छे काम करना, मर्द करे या औरत करे दोनों के लिए एक ही चीज़ है। अल्लाह हमें पाकीज़ा ज़िंदगियाँ दे और आपकी ज़िंदगी सब बेकारियाँ से छट जाती है, सब इसर और अगलाल आपके दिल दिमाग गलों से गर्दनों से उतर जाते हैं। आप फोकस ज़िंदगी बसर कर लें और उसके बाद दोबारा शैतान की कुछ बातें, शैतान का वार किस पे कारगर है, आयत 98 से 100 से पता चलता है। फ़ैज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तईस बिल्ला, हम कुरान पाक पढ़ते हुए औज़बिल्ला जो पढ़ते हैं ना, वही आयत पे अमल करते हैं। इन बिटवीन सूरत में से कहीं भी कुरान शुरू करें तो बस उससे पहले औज़बिल्ला पढ़ लें, क्योंकि अल्लाह ने इधर हुक्म दिया। क्यों भाई कुरान पढ़ने बैठे हैं तो अब शैतान से बचने की बातें क्यों हो रही हैं? इसलिए कि अब तो उसको पता चल गया है कि ये बंदा बहुत बड़े बड़े फ़ैसले करेगा। और इसी तरह से अल्लाह पे तवक्कुल की बातें हैं, मुराद ये है कि तुम शऊर के साथ जब औज़बिल्लाह पढ़ लोगे तो शैतान का वार तुम पर नहीं चलेगा। फिर उसके बाद आयत 101 से 105 में कुरान पाक की कुछ आयात मनसूख क्यों की जाती हैं, इसका जवाब है। पहले पारे में भी हमने आलमोस्ट 1/3 पारे के करीब पे बात की थी माननसख मिन आयत पे, यहाँ भी है। तो इसमें एक थोड़ी सी एक इल्मी बातें हैं जो इंशाल्लाह आप बाद में समझें, लेकिन इतना समझ लें कि गुज़रते हुए वक्त के तकाज़ों के मुताबिक अल्लाह अपने कुछ अहकामात को बदल कर इस वक्त जो हमारे पास है उसको लेकर आते हैं। आपका मेरा अमल क्या है कि जो आयात इस वक्त हमारे पास हैं हम उन पर अमल करें। और उसके बाद आयत 106 से 109, मजबूरी से किया गया गुना उसकी क्या हैसियत है। मन कफर बिल्लाहि मिन बादी ईमानी, जिसने अल्लाह के साथ कुफर किया ईमान लाने के बाद, इल्ला मन उक्रिहा, हाँ मसला क्या था कि उसको मजबूर कर दिया गया, वक़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान। अम्मार बिन जासिर का नाम लिख लीजिए इस आयत के साथ, मक्का वालों ने रोक लिया, ज़बरदस्ती कहा कि मोहम्मद के खिलाफ बात करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अदरवाइज हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। उनका किस्सा है, क्या पता चला कि जब कोई किसी को बाय फोर्स किसी गुनाह पे मजबूर करे तो अल्लाह ताला उसको उस पे नहीं पकड़ेगा। और आयत 110 से 111, अभी मोहब्बत के इम्तिहान और भी हैं। जब बंदा अल्लाह से मोहब्बत का दावा करता है ना, तो उसके रास्ते में हिजरत और कुर्बानियाँ और सब्र और मुजाहिदों की बात आती है। दुनिया में भी किसी से मोहब्बत का दावा करके हम घर नहीं बैठ जाते, तो ये आयत सुम्मा इन्ना रब्बका से लेके वहुम ला युज़लमून में खुशी खुशी अल्लाह के रास्ते में एक मरहले से दूसरे मरहले पे जाने की दावत देती है। और आयत 112 से 119 में जब अल्लाह की नेमतों की नाकदरी की जाए तो क्या होता है, दुख के साथ कहूँगी कि इस वक्त हमारे शहरों के कुछ ऐसे ही हालात हैं। वदरबल्लाहु मसलन करयतन कानत आमिनतम मुतमईनतम याती हर इस्तुहार गदम मिन कुल्ली मकान। चाहे ये मक्का की बात है, ये कराची की बात है, ये पूरे पाकिस्तान की बात है, या इस वक्त पूरी दुनिया की ये बात है, लेकिन असूल इसमें एक ही बता दिया है कि जब तुम नेमतों की कदर नहीं करोगे अल्लाह नेमतें छीनेगा। और अल्लाह ताला आपको मुझे आज इस सारे हालात में खैर की तरफ बढ़ने वाला बना दे। आप सूरत के एंड पे आयत 122 से 123 में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। आप नोट कर रहे हैं कि पारों के एंड पे इनका जिक्र आता है अमूमन, ताकि इनकी रोशनी में इन चीज़ों को देखो। तो हज़रत इब्राहीम अपनी ज़ात में एक उम्मत थे। इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन, क्यों भाई, जुमला लिख लीजिए, वो काम जो पूरी उम्मत मिलके करती है वो एक अकेले इब्राहीम से अल्लाह ने करा दिया। और वो क्या था, अपने वीरान घर को आबाद करा लिया, लेकिन घर बैठ के नहीं हुआ था, कुर्बानियाँ दी, बेटे को छोड़ा, बीवी को छोड़ा। तो इसमें उनकी खूबियाँ हैं बड़ी प्यारी, अगर आप नोट कर लें। कानित थे यानी दवाम भी था और आजजी भी थी, हनीफ यानी फोकस थे, शिर्क नहीं करते थे, अल्लाह की नेमतों के कदरदान थे। आज आप और मैं हैं, अपने आप से पूछ लें, हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह आपसे भी बहुत सारे काम लेगा। और अल्लाह के नज़दीक अफजल दिन जुम्मा है, आयत 124 है। पिछली कौमों पे भी जुमे का ही दिन हॉलीडे था, लेकिन उन्होंने अपनी मर्ज़ी से हफ्ते के दिन को चूज़ किया था। और आखिर में फिर आयत 125 में तरीक़ा दावत तबलीग, कुरान की सबसे मेरा ख्याल है कि क्लियर आयत है, चार स्टेप में तबलीग करने की बात है। उदु इला सबीली रब्बी का बिल हिकमा, पहली बात है हिकमत हो, मौइज़ा हसना हो, जादिल हम बिल्लती अहसन हो। क्या पता चला, नए लोगों से बात शुरू करो तो हिकमत से करो, ज़रा सुनते जा रहे हैं और अमल नहीं कर रहे तो मौइज़ात हसना करो, उनको झंझोड़ो कि क्या हो गया, अमल क्यों नहीं कर रहे। और अगर फिर भी अमल ना करें, आगे से बहसे करें, तो जादिल हम बिल्लती अहसन, अल्लाह ताला हमें बेहतरीन तरीके से दावत करने वाला बना दे। और फिर आयत 126 से 128 जो पारे की आखिरी आयत हैं, इसका मैसेज क्या है कि हज़रत इब्राहीम अपनी ज़ात में एक उम्मत थे, आप भी उम्मत बनिए। कैसे बनेंगे, वही नाक़ब तुम फ़ाक़िबू बे मिसली मा उक़िब तुम भी ही, रास्ते तो हैं तुम्हारे पास, मौके तो हैं बदले लेने के, काम करने के, लेकिन अगर सब्र करके तुम अपने काम पे लगे रहोगे अल्लाह तुमसे बहुत बड़े काम लेगा। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपसे मुझसे बेहतरीन काम ले ले। सुबहाना रब्बी का रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।